बोले तो मते बिल्कुल ही किसी प्रकार ये तंदुरुस्त हो जाए, पर ये तंदुरुस्त हुए आंख मुंडी फिर खोल ली, बोले तन कर नहीं आंख खोल ली, बोले भैया क्या करूं नींद तो आई नहीं, कितनी देर तक बोले आंख मुंडे रखो ऐसे ही झूठे मूठे, तुमको आंख मिचलो आंख मिचली पर नींद आई नहीं, मैं क्या करूं बता। उस शिशुओं ने देखा था नींद आने की प्रक्रिया, नींद की क्या दवा थी ये शिशुओं ने देख तो लिया था, पर और इनके मन में भी बात थी जैसी ये सेवा करनी वैसी सेवा हम करेंगे, पर इनका आप लोगों को याद होगा अघासुर की लीला में ये बात आई थी, इन्होंने एक प्रस्ताव पास कर लिया, सखाओं ने स्वीकार कर लिया था उसको एक मत से, कन्हैया की और सब बातों की तो हम नकल करेंगे तो मुरली के नकल नहीं, क्योंकि मुरली के नकल करेंगे तो हम लोग तो गाने लगेंगे अस्त व्यस्त, और इनकी मुरली का जो सुंदर सुर है उससे हम वंचित हो जाए। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि भाई अपने जो हैं ये मुरली के नकल नहीं करेंगे, तो दाऊ को सुलाने के लिए तो मुरली बजाई थी इसने, हम क्या बजाएं बताओ। तो लोगों ने कहा आपस में कि भाई मुरली तो बजानी, तो दूसरे ने कहा अरे हो अरे क्या है हमारे कंठों में मुरली बसती, कन्हैया के राजी करने के लिए कंठ है ना हमारे, कैसे बसती है। तो एक ने कहा कि तुम देखते नहीं क्या, जब हम लोग बोलते हैं तो कन्हैया मुग्ध हो, हमारी बोली सुन सुन के वो कहता है जरा वो और बोल भैया क्या कदर ठीक से समझा, तो हमारी बोली चाहे हमको बुरी लगती हो पर कन्हैया को तो हमारी बोली लगती है अमृत शरीफ। देखो हम अभी गा रहे थे ना तो कन्हैया ने कहा बड़ा मीठा गा रहे हो भैया, तो बोले अपने तो गाओ गाओ, जरा गोस्वामी जी को बुला ले, बोले अपने तो गाओ, तो अपनी भावना के गीत ब्रज सुंदरियों के मुख से सुने हुए गीत, और कोई गीत गात नहीं यहां पर गाते, कन्हैया की लीला के गीत जिसका जिसमें मन डूबा जिसको जो याद आया, तो अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मन रायन कृष्ण महाराज सुनई है कोई मधुर मधुर सुर गावत सांवरे कुंवर ही नींद अनावत, सांवरे को नींद आ जाए अब इनको तो उनका सुख चाहिए ना, गाने में सुख मिले तो गावे, नाचने मिले तो नाचे, रोने मिले तो रोवे, और डांटे मिले तो डांटे भी, इनको तो कन्हैया का सुख चाहिए। अब इनके मन में आया कि इनकी मुरली के समान गाना चाहिए ना, इनकी मुरली के समान गाना हो तभी तो लगेगा नहीं। जय कृष्ण चंद्र करुणा निधान ब्रज जन पंकज बनु सुख दंभान, नव नव जलधर समय अंग श्याम लावण्य धाम सदकोटि काम, सुर भय देन भुज दंड मूल दामिनी समान राजत दुकूल, मद छके असित सित अरुण नयन मधुसन सुधा बरसत सुभयन, कुंडल मंडित श्रुति द्वितीय दोल परिझलक गंध शोभित कपोल, मुख मुरल सुधा बरसत सुचंद निज जन जीवन यानंद कंद। लगे गाने, बोले भैया अपने तो एक दिन कहा था, दूसरे ने कहा माथे पे मुकुट देखी चंद्रिका चटक देखी सभी की छटक देख रूप रस पीजिए लोचन विशाल देखी गरे गुंज माल देखी अधर रसाल देखी चित्त चुप कीजिए कुंडल हलन देखी पलक चलन देखी अलक बलन देख सरबस दीजिए पीतांबर छोर देखी मुरली की घोर देखी सांवरे की ओर देखी देखबो ही कीजिए लगे एवं निगूढ़ात्म गतिस्व मायया गोपात्म जत्तं सरित विडम्बयन् रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य समं ग्राम्य वदीस चेष्टितः। भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्याति दिव्य परम मनोहर अरण्य विहार का ये छोटा सा चित्र है, बहुत छोटा। अनंत अनंत काल तक अनंत 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 शेष अनंत अनंत काल तक हजारों हजारों मुखों से इस लीला का गान करते रहे तो न वहां काल का व्यवधान न किसी चीज की सीमा। गाते रहे गाते नहीं किसकी क्षमता है जो भगवान की लीला माधुर्य का वर्णन सीमित शब्दों के द्वारा कर सके। और ऐश्वर्य रूप का तो वर्णन वैसे ही नहीं हो सकता। यहां पर तो भगवान सारे ऐश्वर्य को भूलकर सर्वथा प्राकृत गोप शिशु की भांति लीला कर रहे हैं वैकुंठ धाम में। नित्य निरंतर रमा उनके चरण सरोजों की सेवा में संलग्न रहती असमोध ऐश्वर्य उनका नित्य का अनुचर है दास है। फिर भी जिस प्रकार ये साधारण प्राकृत शिशु अपनी अपनी मित्रों के साथ खेलते हैं उसी प्रकार ऐसे खेल इन्होंने खेले खेलते रहे और ये उसमें तन्मय हो रहे लीला विहार में। असुरों को परम गति का दान वितरण करते समय कहीं कुछ इनकी लीला में संकोच होता है कि छिद्र सा बन जाता है उस छिद्र के अंतराल से भले ही उसकी आड़ में ऐश्वर्य जरा सा झांक ले असुर मान के समय ऐश्वर्य कहीं जरा सा झांक ले अन्यथा इस नील सुंदर के रसपान में ऐश्वर्य नहीं आता। ये तो रसपान में नित्य निमग्न रहते हैं स्वयं नील सुंदर। एक विधि निज माया करी गूढ़ा रहे काल बहु समुझन मूढ़ा बिच बिच भय प्रकट हरि तम हूं तब हूं दनुज हने तब तेन तब हूं बीरत इस प्रकार बिहार जो गायन संग ग्वार गंवार बड़ी बेर आवत शिव मन में सुप्रभु यूं बिहतया बन में। ये बन बिहार का थोड़ा सा चित्रण। इसके बाद की लीला देर से शुरू किया था तो कहें तो कर दे थोड़ा वो जरा इतनी मीठी तो नहीं पंद्रह बीस मिनट लगे उसका फिर भाव कल खोल देंगे। ये श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तु कृष्णाद्या गोपा प्रेमणी मब्रुवन राम राम महाबाहु कृष्ण कृष्ण निबर्हणम कितु विदूरे सुमहद्वनम तालाल संकुलम। संक्षेप में इसको कह देते हैं ये सखाओं में प्रधान सखा रहे श्रीदामा तो उन्होंने सुबल सुब कृष्ण छोटे कृष्ण ग्वाल वालों ने आकर के ये भी एक लीला विहार बड़े प्रेम से कहा श्याम राम से कि भैया देखो अब तुम्हारे सामने आकर के हमारी कोई बात बाकी मन की रह जाए तो कैसे रहेगी। हमारे तो मन में आ रही है कि ताल खाने के मन में आ रही है। और दाऊ भैया तुम्हारा तो नाम ही बलराम है, तुम्हारे बल का क्या ठिकाना है। और ये कन्हैया ये तो बात की बात में सारे असुरों को मार डाल। तो भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जंगल है, उस जंगल में तमाम ताल के पेड़ लगे हैं और वहाँ गिरते रहते हैं ताल के फड़ फल। ऊपर वहाँ एक राक्षस रहता है गधे के रूप में धेनुकासुर, और वो बड़ा बलवान है और न मालूम उसने कितने आदमियों को आज तक खा लिया है। तो भैया हमारी तो जीभ अभी मुंह में पानी भरा आ रहा, बड़े मीठे मीठे उसके फल हैं, वो पड़े रहते हैं, तो उसकी सुगंध यहाँ तक देखो तुमको आ रही है ना सुगंध, अभी यहाँ तक सुगंध आ रही है। तो हमारा मन मोहित हो रहा है। अब भाई हमारी जो इच्छा है बांसास्ती महती राम गम्यता मिली रोचित, तुम्हारे जचो तो भैया हमारी मनसा पूरी कर दो, तुम चलो साथ। तो दोनों हंसे गए वहां पर और तो जा करके उस पशु को मार दिया। ये कथा कल कहेंगे, बीच में अगली बात कहेंगे। इसके बाद ये ब्रज में आए, ये बात कहने का मन था आज, तो ये थोड़ी सी। अब ये गाय चराने लगे, रोज का इनका काम हुआ गाय चराने जाएं और ये रोज लौटें। अब यहाँ पर विचित्र चीज क्या है, यहाँ से माधुर्य का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से माधुर्य का प्रारंभ हो जाता है तो ये धेनु को जब मार दिया, ये कथा धेनु की कल कहेंगे बाकी रही। तो इस दिन इस समय क्या होने लगा था, ये ब्रज सुंदरियां समाज अब तक तो वात्सल्यवती गोपिका ही आती थी बच्चों को देखने के लिए, अब ये ब्रजराज नंदन के श्रीअंग में पौगंड अवस्था में ही कैशोर का की अभिव्यक्ति हो गई और इसकी आवश्यकता भी। अब यदि कैशोर की अभिव्यक्ति न होती तो जितना ये भगवान का निकुंज लीला का प्रकरण है ये सब कुछ बनते ही नहीं, और असल में अश्रद्धालुओं के लिए बनाई नहीं। वो तो 10 वर्ष की अवस्था में श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ आए, वृंदावन को छोड़ आए, उनकी दृष्टि में ये चीज बनी नहीं, लेकिन गोपांगनाओं की दृष्टि में और श्याम सुंदर की दृष्टि में ये भगवान में ये श्याम सुंदर में कैशोर भाव का आविर्भाव हो। तो श्री राधिका दी और इनकी काव्य रूपा गोपियों में भी ये इसी वयस के समुचित कैशोर भाव का विकास होता है। तो ये क्या होता है, जब ये रोज जाते तो दिन भर तो उन गोपांगनाओं के चर्चा का मनन का विषय बना रहता श्याम सुंदर। यही चीज है भला साधना दृष्टि से हम देखें तो उन श्याम सुंदर के अतिरिक्त उनके मन पर कल्पना के लिए भी क्षण मात्र के लिए भी दूसरे किसी भाव का उदय नहीं होता, स्मृति नहीं होती। तो वो भगवान के स्मरण के द्वारा ही वो ब्रजबध में दिन भर अपने मनस्ताप को शांत करती रहती, अपराह्न काल होता तो उनके मन में बड़ी भारी त्वरा लग जाती, अब लौटते होंगे, अब बिहार करते हुए लौटते होंगे, तो उनको उनका लौटना देखने के लिए वे सब के सब वहां पर दरवाजों पर आकर के खड़ी हो जाती, चारों तरफ देखती, आते होंगे, दूर से बंसी ध्वनि सुनाई देती तो उनके मन में एक अभिनव रस का संचार हो जाता और वे वहीं से अपने मन को खो देते और वहीं से उनको दिखने लगता उनका स्वरूप भी मुरली ध्वनि के साथ साथ दिखने लगता। वो देखते कि वो गायों के खुरों से जो रजकण उड़े उससे तमाम आपाद मस्तक उनका घुसरित हो रहा है और ऐसा मालूम होता है कि ये घन कृष्ण जो केश राशि है कुंतल घुंघराली ये इन पर मानो ये भंवरे जो घुंघराले केश ना तो मालूम होता कि भंवरों की राशि है। असंख्य अगणित भ्रमर जो है ये भगवान के मस्तक पर खेल रहे हैं, परंतु ऐसा मालूम होता कि असल हो गए, मडराते नहीं है, मन वहां पर बैठ गई वो और वो चूड़ा उनका बंधा हुआ मालती पुष्पों के द्वारा ग्रंथित पूर्व भाग में उनके मोर पुच्छ लगा हुआ और ये नाचते कूदते आते तो सुंदरी माधुरी सौकुमारी लावण्य कमनीयता मानो सब के खान है, इन्हीं से सब निकले हैं। इस प्रकार वो अनंत अनंत सौंदर्य माधुरी समुद्र में वो डूब जाती और मानो कभी उनकी आंखों ने इनको देखा ही ना। इस प्रकार अतृप्त नयनों से वो देखती रह जाती और न मालूम कब तक देखती रहे। वहां पर काल का व्यवधान मिट जाता, लोक दृष्टि में काल नहीं बीतता पर वहां तो न मालूम कितने काल तक वो गोप सुंदरियां वहां पर खड़ी रहती और उनको देखती रहती। तो ये शिलाधिकारी जो गोपांग बनाए रही उनकी काय रूपा सखिया ये सब देख देख करके और अपने नेत्रों को अतृप्त रखती है हमेशा। भगवान आ करके मन वहां खड़े रह जाते, वो देखती कि ये खड़े रह गए हैं और ये मानो वंशी ध्वनि के द्वारा हमसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये वहां पर ये दशा इनकी रोज की दशा होती जो निर्विकल्प समाधि में नहीं होती। निर्विकल्प समाधि में जो दशा होती है उसमें तो कुछ रहता नहीं, कुछ दिखता नहीं, सबका अभाव हो जाता है और यहां सबका भाव हो जाता श्याम सुंदर में। ये श्याम सुंदर मैं बन जाती, झूमती रह जाती, उसी झूमने में इनको छोड़ करके श्याम सुंदर आगे बढ़ते। वो काष्ठ पुतलिका की भांति इनका शरीर घर में लौट जाता, रात भर इसी भाव में निमग्न में रहती और रहती हुई वहां पर वे रात भर दर्शन करती रहती, संलाप करती रहती, ये उनका रोज का कार्यक्रम। तो भगवान आज भी धेनुकासुर का वध करके ये लौटे तो गोप सुंदरियों ने उनका वचनों से नहीं, अपना आत्मनिवेदन करके उनका स्वागत किया, सत्कार किया और वहां पर वे लोग अपनी अपनी जो भाव में निमग्न कम हो सके, जिनका थोड़ा कम अधिकार रहा, सभी बड़ी मने सुखदेव जी ने तो कुब्जा के भी गुण गाए हैं और बड़े भारी ऊंचे ऊंचे लोग भी कुब्जा के भाग्य की सराहना करते हैं। जरा सा एक दुर्भगे शब्द कहा सुखदेव जी ने, उसके लिए उसके मन में जरा कोई वासना रही इसको लेकर के, श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार किया। इसलिए कुब्जा भी महान भाग्यवती, कोई ठिकाना नहीं उसका। तो ये गोप सुंदरियां जिनके अंदर अभी आप सुन चुके हैं कि केवल श्री कृष्ण सुख ही जिनका जीवन है, इसके सिवा उनके जीवन का कोई स्वरूप ही नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण को पाकर अतृप्त नैनों से देखती रह गई और कम भाव वाली जो है वे गाने लगी। ये इनके द्वारा एक वो पद गाने की बात थी, इसलिए इनको बुलाया, इसीलिए लीला की बात कही बीच में, वो आवनी का है पद। ये पद सुना दीजिए। हाँ, एक तो मधुर, एक नीलम madhur kaanti ghar ghar ye mangal braj jan man ran